बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज गुफ्तगू होगी ब्रिक्स सरबराही इजलास के तनाजुर में हम इस ग्रुप की अहमियत और मौजूदा आलमी निज़ाम और आलमी इक्तसादी बहरान में इस ग्रुप के किरदार के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन जैसा कि आपने खबरों में मुलाहिज़ा फरमाया, ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जुनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स ग्रुप का चौथा सरबराही इजलास आज जुमेरात को नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस ग्रुप की अहमियत यह है कि आलमी इक्तसादी तरक्की में इस ग्रुप का हिस्सा 56% है, जबकि इसके मुकाबले में 7 बड़े सनअती मुल्कों का हिस्सा सिर्फ 9% बताया जाता है। आलमी इक्तसादी बहरान के पेश नज़र इस नए इक्तसादी ब्लॉक को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। आज दिल्ली में होने वाले सरबराही इजलास में बाहमी तजारत में फरोख की राहों और इकतसादी मसाइल के जायजे के साथ ही आलमी सियासी मसाइल पर भी तवज्जो दी गई और आलमी निजाम की खामियां दूर करने के लिए मुश्तरका मसाई की जरूरत पर ताकीद की गई। इसी के साथ ब्रिक्स सरबराहों ने बाहमी तजारत में मकामी करेंसी के इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक किया है, जिससे इस बात की निशानदेही होती है कि यह ग्रुप खुद को इस्तेमारी ताकतों के हर किस्म के असर से दूर रखना चाहता है। इजलास के अख्तिताम पर एक ऐलामिया जारी किया गया, जिसमें पुरअमन एटमी तवानाई को ईरान का हक करार दिया गया और ऐलान किया गया कि ईरान का एटमी मसला सिर्फ मुजाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। ब्रिक्स ग्रुप के सरबराहों ने अपने ऐलामिये में ईरान के खिलाफ खुसराना पाबंदियों की मुखालफत करते हुए ऐलान किया है कि इस ग्रुप के रुकन ममालिक ईरान के खिलाफ मगरिब की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते और उस पर अमल नहीं करेंगे। ब्रिक्स ग्रुप के दिल्ली सरबराही इजलास के ऐलामिये में इसी तरह शाम में फौजी मुदाखलत की मुखालफत का भी ऐलान किया गया है। ब्रिक्स ग्रुप की अहमियत क्या है, इस ग्रुप का किरदार क्या होगा और इस ग्रुप के रुकन ममालिक मौजूदा आलमी तनाजुर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इन बातों का जायजा लेंगे आज हम प्रोग्राम अंदाज़े जहां में। तो आइए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां इस वक्त हिंदुस्तान के मुमताज दानिश्वर और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तुलसी राम साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोफेसर साहब आदाब अर्ज़ है। प्रोफेसर तुलसी राम साहब आदाब अर्ज़ है जनाब। जनाब ब्रिक्स ग्रुप की अहमियत क्या है?
इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस समय जो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो शक्तियां जो हैं, यह दुनिया में बेरोक टोक हस्तक्षेप करना चाहती हैं, खास करके उन देशों में जो देश अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से अपनाते हैं और पश्चिम के या अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आते हैं। ये हमने देखा कि उनका जो हस्तक्षेप, खास करके मिलिट्री हस्तक्षेप रहा है इराक में, अफगानिस्तान में, अभी हाल ही में लीबिया में और कई और छोटे छोटे जैसे यमन जैसे देशों में, इजिप्ट में, ये लोग अपने एनजीओ खड़ा करते हैं और उन एनजीओ के माध्यम से वहां की सरकारों को उलटने के लिए ये उकसाते हैं और साथ में उनको हथियार भी बांटते हैं और आर्म्ड एक हस्तक्षेप के लिए वो जनता को उकसाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो ब्रिक्स नेशन है, जो दुनिया के करीब 40% जो आबादी है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं और भारत चीन तो सबसे बड़े आबादी वाले दुनिया में ये नंबर 1 और 2 देश हैं। रसिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ये बहुत ही अहम देश हैं इकोनॉमिक के हिसाब से, अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए। तो रसिया तो सुपर पावर पहले से भी रहा है और अमेरिका के खिलाफ एक बहुत मजबूत स्थिति में रहा है। अब ये पांच देश जो दुनिया के 40% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मैन पावर है दुनिया में। साथ ही मैन पावर होने के नाते अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन पांच देशों में जो आपसी व्यापार है वो एक बहुत महत्व का है। दूसरी चीज कि अभी तक अमेरिका डोमिनेटेड इकॉनमी सारी दुनिया में चलती रही है, जिसका कारण ये रहा है कि जो डॉलर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा थी उससे वो लोग ब्लैकमेल करते थे। IMF या वर्ल्ड बैंक जो रहा है वो भी गरीब मुल्कों को कर्ज देने में आनाकानी करता रहा है और उसमें भी डोमिनेशन अमेरिकन अधिकारियों का ही रहा है ये दोनों संस्थाओं में। और सबसे खराब बात यह है कि पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड नेशंस में वो अमेरिका का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वो जो कुछ भी चाहते थे वो कर लेने में सक्षम होते थे। लेकिन ये ब्रिक्स देश जब से आपस में सहयोग करना शुरू किए हैं, हाल ही में जैसे सीरिया के मामले में रूस और चीन दोनों देशों ने वीटो दो दो बार किया, और इससे ये साबित होता है कि अमेरिकन डोमिनेशन को पहली बार सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ब्रिक्स नेशन से हुई है। और भविष्य में भी मैं समझता हूं कि ये जो ब्रिक राष्ट्र जो हैं वो पश्चिमी डोमिनेशन को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तुलसीराम साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और नाज़रीन, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मुमताज तज़ज़िया निगार नज़ीर हुसैन साहब। नज़ीर हुसैन साहब, आदाब अर्ज़ है।
जी अस्सलामु अलैकुम शराफत साहब।
जी नज़ीर हुसैन साहब, दिल्ली में आज ब्रिक्स ग्रुप का चौथा सरबराही इजलास हुआ है, इस ग्रुप की तवानाइयों के बारे में आपकी राय क्या है?
जी अभी तफसील से हमारे दोस्त ने इसका इजहार किया है। असल में ये देखिए कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है और रशियन फेडरेशन वजूद में आई है, मिलिटैरिली दुनिया में एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हुई है मिलिटैरिली, और उस यूनिपोलर वर्ल्ड के खिलाफ जो है जैसे बताया गया है कि मुख्तलिफ अतराफ से आवाज़ें भी उठी, मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, और ब्रिक्स कोई पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इससे पहले ECO बन चुकी है, इससे पहले SCO बन चुकी है, जो इस जो ग्लोबल डोमिनेंस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दुनिया का इकोनॉमिक ऑर्डर है वो भी वेस्टर्न बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन डोमिनेटेड है, जिसमें डॉलर जो है अमेरिकन करेंसी जो है उसको एक बहुत बड़ी डोमिनेंस हासिल है। अगर आप सियासी तौर से देखें, माशी तौर से देखें, माशरती तौर से देखें, इवन ग्लोबलाइजेशन को देखें, तो दुनिया का पूरा निज़ाम जो है वो अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने 9/11 के बाद कई मुल्कों पे, बल्कि ख़ास तौर से मुसलमान मुल्कों पे चढ़ाई की है, और अभी जो है वो ईरान के खिलाफ भी वो धमकियाँ दे रहा है। लिहाजा इस आर्डर को देखते हुए कुछ ममालिक ने यह फैसला किया था 2009 में कि हम मिल के एक ऐसा ग्रुप तश्कील देंगे जो माशी तौर से वेस्ट की डोमिनेंस को और ख़ास तौर से अमेरिका की डोमिनेंस को ख़त्म करेगा, जिसमें अभी बताया गया जैसे कि ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये बात हमारे नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए कि ना सिर्फ ये दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा इनके पास है, बल्कि आपने अपने इब्तदाई कलमात में फरमाया था कि 50% से ज़्यादा जो ग्लोबल इकॉनमी है उनको, उनकी जो दौड़ है वो इन ममालिक के पास हैं। इसके अलावा अगर इनके रिसोर्सेज देखें, इसके अलावा इनकी इंडस्ट्रियल पावर देखें, कहा यह जाता है कि इन ममालिक का जो GDP है वो तकरीबन $20 trillion से ऊपर है, जो कि अमेरिका और पूरे यूरोप को मिला के भी इसकी पहचान नहीं पहुँच सकता। लिहाजा ये एक बहुत अहम ग्रुप है, और अभी इसके इलामिये में आज के इजलास के इलामिये के बाद जो चीज़ें जाहिर हुई हैं उसमें बहुत बड़ी एक अहम चीज़ यह है कि वो एक ऐसा बैंक भी खोलना चाह रहे हैं जो दुनिया को वर्ल्ड बैंक और IMF से निजात दिलाएगा। और जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि कि वो जो आपस के बैंक्स हैं दोनों खुद ममालिक में, वो आपस में अपनी करेंसी में डील करेंगे, यानी कि यूरो में नहीं डील करेंगे, पाउंड स्टर्लिंग में डील नहीं करेंगे और डॉलर में डील नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इससे जो अमेरिकन करेंसी की डोमिनेंस है उसको भी खतरा है, और जाहिर है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इसकी अहमियत और अफादियत यही है कि दुनिया को एक नया इक्तसादी निज़ाम और दुनिया को एक नई नहज की तरफ लेके जाना है, और अगर ये ग्रुप जो है कामयाब होता है एक पैरेलल वर्ल्ड बैंक क्रिएट करने में, तो मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग स्टेट्स को बहुत बड़ा फायदा होगा और वो अमेरिकन डोमिनेंस से, इकोनॉमिक डोमिनेंस से, सियासी डोमिनेंस से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हुसैन साहब। प्रोफेसर तुलसीराम साहब, जनाब ये जो मौजूदा जो इक्तसादी क्राइसिस, जो बहरान दुनिया में आया हुआ है, इस बहरान को दूर करने में ब्रिक्स ग्रुप क्या किरदार अदा कर सकता है?
ये तो ब्रिक्स नेशंस ने जो दिल्ली में समिट हुई है ये साफ कर दिया है इस बात के लिए कि अब किसी भी तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन किसी भी देश में वो नहीं चाहेंगे। वो सीरिया से के ऊपर जो प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशंस में, और चाइना और रूस ने जिस तरह से वीटो किया है, और साथ ही ईरान के जो एटमी एनर्जी वाला मामला है उसको ले करके बार बार अमेरिका धमकी दे रहा था कि ईरान में इंटरवेंशन करने के लिए, और इंटरवेंशन का मतलब उनका यह नहीं सिर्फ है कि ईरान अपना एटमी एनर्जी विकसित ना कर सके, बल्कि वहाँ रेजीम चेंज वो कहते हैं अमेरिकन, जो देश अमेरिका के डोमिनेशन को स्वीकार नहीं करते हैं वहाँ वो रेजीम चेंज के की अवधारणा या कंसेप्ट के अंतर्गत वो तमाम एनजीओज खड़ा करते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, हर तरह की उनको सुविधा देते हैं और एक पैरेलल आंदोलन खड़ा करके जनता के बीच यह प्रचार करते हैं कि यह देश जो है यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियल रेजीम है और इसलिए डेमोक्रेसी हम लाने के लिए ये जो है यहाँ प्रयास करेंगे। तो ये कई देशों में ऐसा वो कर चुके हैं एनजीओ को खड़ा करके, वो ईरान में भी यही कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश उन्होंने इजिप्ट में पहले ही कर चुके हैं, सीरिया में कर चुके हैं, यमन में कर चुके हैं और तमाम इस तरह से फॉर्मर सोवियत यूनियन को देखा जाए तो वो जॉर्जिया में कर चुके हैं, यूक्रेन में ऐसा कर चुके हैं, सेंट्रल एशिया को देखा जाए तो वहां किर्गिजिस्तान में ऐसा कर चुके हैं और कई देशों में वो एनजीओ के माध्यम से सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन ब्रिक्स नेशंस अब ये कटिबद्ध दिखाई देते हैं कि इस तरह का इंटरवेंशन, पहले एनजीओ को खड़ा करना और बाद में मिलिट्री इंटरवेंशन करना, तो ये इस चीज को भली भांति ब्रिक्स नेशन समझ रहे हैं और सीरिया के सवाल पर जिस तरह से वो आगे आए हैं और साथ ही जो इकोनॉमिक सैंक्शन जो ईरान के खिलाफ लाए हैं वेस्ट के लोग या उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये ब्रिक्स नेशंस ने उनको इनकार कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी इकोनॉमिक सैंक्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे। भारत से भी वार्ता चल रही है ईरान से कि अपनी करेंसी में वो तेल का आयात हो वहां से, और ये जो पाइपलाइन वाली बात है ईरान से लेके पाकिस्तान होते इंडिया के लिए वो पहले बंद हो चुकी थी अमेरिका ही के प्रेशर में वो वार्ता, लेकिन संभावना है कि ये सब चीजें अब शुरू होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रिक्स नेशन जो है ये जो अमेरिका का जो डोमिनेशन है वो चाहे मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक डोमिनेशन हो, उसके विरुद्ध ये देश जो है एक बहुत बड़ी भूमिका भविष्य में निभाने जा रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नज़ीर हुसैन साहब, ये ब्रिक्स ग्रुप जो है इसको एक इक्तसादी ब्लॉक कहा जाता है, लेकिन आज दिल्ली में जो समिट हुई है और उसमें जो मसाइल उठाए गए और दिल्ली डिक्लेरेशन में जिन बातों का ऐलान किया गया उससे पता ही चल रहा है कि अब ये ब्लॉक सिर्फ इक्तसादी ब्लॉक नहीं है बल्कि ये सियासी ब्लॉक बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है?
दो वीटो बेरिंग कंट्रीज हैं जिसमें रूस और चाइना शामिल है, और जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास होगी तो इनका एक बहुत कुलीदी किरदार होगा। और अभी जैसे बताया गया कि सीरिया के मामले में इन दो ममालिक ने अपना वीटो इस्तेमाल किया, वो इस वजह से कि इराक की जो वॉर थी 2003 की वो इलीगल इलिस्टिमेट वार थी, क्योंकि उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कोई मौजूद नहीं थी। इसी तरह जो लीबिया में इंटरवेंशन होती है उसमें ये कैटेगोरिकल लिखा हुआ था कि ऑल पॉसिबल मीन्स विल बी एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ सीरिया, उसमें ये सॉरी लीबिया, उसमें ये कोई ऐसी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी। लेकिन नेटो ने, खासतौर से सरकोजी ने और अमेरिका ने इसको एक बहाना बना के तो ये हमला कर दिया। अभी यही चीज़ वो सीरिया के खिलाफ करना चाह रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि चीन और रूस ने बहुत खलीदी किरदार अदा किया है। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि रूस ने अपना एक बहरी बेड़ा जो है वो मेडिटेरियन सी में ले आए थे कि अगर कोई पॉसिबल इंटरवेंशन की तरफ ये लोग जाते हैं तो रूस जो है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। लिहाजा और दूसरी बात ये देखिए कि जब तक आप इकोनॉमिक डोमिनेंस से बाहर नहीं आते आप एक पॉलिटिकल डोमिनेंस को ख़त्म नहीं कर सकते। लिहाजा अगर इस ग्रुप ने यह फैसला कर लिया है कि वो अमेरिकन इकोनॉमिक डोमिनेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे या नहीं सहेंगे या मजीद उसको इस तरफ नहीं जाएंगे, तो इसका लामोहला एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन भी बन जाता है। और अभी अलामिया में शायद ये बात भी जिक्र है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी कोई बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अमेरिका के और वेस्ट के चुंगल से इकोनॉमिकली आज़ाद हो जाते हैं तो इसमें कोई बईद नहीं है कि ये ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने में भी एक कुलीदी किरदार अदा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये उसमें से कुछ ममालिक जो हैं वो SCO के मेंबर हैं, और SCO मालूम है आपको कि वो अमेरिकन डोमिनेंस के खिलाफ है। ऑल्दो वो एंटी टेररिज्म ग्रुप है, इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट में वो अमेरिकन डोमिनेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। लिहाजा अभी जो दो स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं सीरिया के मामले में और ईरान के मामले में, मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश आइन है, और ये इस बात की तरफ एक मुबैन सबूत है कि ये जो ग्रुप है ये आइंदा चल के अमेरिकन जो रीजनल और इंटरनेशनल ग्लोबल हेजमनी है उसको एक चेकमेट करेगा। आप ये भी ना भूलें कि रशिया माजी में एक बहुत बड़ी सुपर पावर रहा है और उसका जो नॉस्टैल्जिया है बीइंग द सुपर पावर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और चाइना के मतलब ये कहा जाता है कि चाइना इज़ अ स्लीपिंग ड्रैगन और चाइना इज़ द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो लिहाजा अगर ये दो ममालिक और बाकी भारत और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील मिलके अगर इस ग्रुप को मज़ीद तकवीत देते हैं इकोनॉमिकली और पोलिटिकली, तो इसमें हर तरह से एक पोटेंशल है कि अमेरिकन पॉलिटिकल और कल्चरल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को ये चैलेंज कर सकता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है हिंदुस्तान के एक और सीनियर तजिया निगार जॉन दयाल साहब से। जॉन दयाल साहब आदाब अर्ज है।
आदाब
जॉन दयाल साहब, ब्रिक्स इजलास के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही है, दिल्ली समिट के बारे में आपकी राय क्या है, कितनी कामयाब है आपकी नजर में यह समिट?
दिल्ली में हो रहा है, इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी
जी,
क्योंकि ब्रिक्स का एक अहमियत बढ़ती जाएगी, मगर ब्रिक्स के सामने बहुत लंबा रास्ता है। इसका जन्म, इसका बर्थ बड़ी खुशफहमी में हुआ है, उसको किस तरीके से आगे ले जाते हैं अगले दो दिन में दिल्ली में देखा जाएगा
जी।
मगर जैसे कहा जा रहा था अभी, इसकी आज की तारीख में कि ब्रिक्स है, यही एक बहुत बड़ी बात है, और अमेरिका और नेटो और यूरोपियन यूनियन की जो मिलिट्री पोजीशन रही है रिसेंटली, क्योंकि उन लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में तो आजकल पिछले 5 साल से ये तो बात साफ है कि इकोनॉमिकली वो उतना बड़ा वर्ल्ड में नहीं रह पाए जितना पहले थे, और उनकी इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा है, अंदरूनी उनकी मामूलियत इतनी खराब है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अभी भी वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत ही जोर रखते हैं, क्योंकि उनके असला बहुत है, मिलिट्री पोजीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके खिलाफ ब्रिक्स किस तरीके से आगे आएगा देखने की बात है। और इसके ब्रिक्स के इस वक्त एक और भी बात यह है कि ब्रिक्स के अंदर अभी उतनी ज्यादा जितना सोचते थे हम कि एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा, उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि चाइना भी है, रशिया भी है और हिंदुस्तान भी है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान को लेके और जगह को लेके अभी भी वो बिल्कुल बन नहीं पाया है। हालांकि हिंदुस्तान का रशिया से तो इतना अच्छा ताल्लुकात हैं और इतने पुराने ताल्लुकात हैं कि उसको का उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स में एक शुरुआत में ही एक ताकत आ गई है, एक कुवत आ गई है जो कि वैसे नहीं आ पाती अगर और जगह होती। तो उस अगर नजरअंदाज में देखा जाए तो दिल्ली, उस नजर से अगर देखा जाए तो दिल्ली भी जो समिट हो रहा है, यहाँ पर आए हैं रशिया के, सऊदी अफ्रीका के, ब्राजील के, चीन के
जी।
तो इसकी एक जिस तरीके से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है बहुत ही एक अच्छी इसको शुरुआत मान के चला जा रहा है
जी। जॉन दयाल साहब, ये ग्रुप आपकी नजर में ये इकोनॉमिक ब्लॉक है या पॉलिटिकल ब्लॉक है?
देखिए इस वक्त मिलिट्री ब्लॉक तो है नहीं, तो उसको हम बात छोड़ दें
जी।
पॉलिटिकल ब्लॉक है अगर आप उसको ये मानते हैं कि अमेरिका की हेजिमनी के खिलाफ पॉलिटिकल ब्लॉक है तो बाकायदा है और उसमें कोई दो राय नहीं है, हमको उसमें कोई छुप के बात नहीं करनी है, कोई सीक्रेट बात नहीं है। अमेरिका के खिलाफ बड़े ही अहम पॉलिटिकल ब्लॉक है जिसका यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में इसका नजरिया साफ नजर आएगा और आगे भी आता रहेगा जब भी वेस्टर्न ब्लॉक अगर किसी और देश में छेड़ाकानी करने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक ब्लॉक इस वक्त इमीडिएट उसमें इसका जो इकोनॉमिक है या माली या तिजारत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अहमियत रखता है। ये सब बड़े देश अभी तक वेस्ट अपनी मार्केट समझ रहा था, मगर यहाँ पर हम एक दूसरे की मार्केट भी हैं, एक दूसरे की खानापूर्ति भी कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेस को अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल करने के कर सकते हैं, ना कि वेस्ट के फायदे के लिए या वेस्ट की कंपनीज के फायदे के लिए
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जानदयाल साहब, लाइन पे मौजूद रहिएगा। प्रोफेसर तुलसीराम साहब, ये दिल्ली समिट से पहले समझा ये जा रहा था कि दिल्ली में जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है इसमें जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन पर तवज्जो दी जाएगी और मेंबर मुल्कों के दरमियान तिजारत को बढ़ावा देने का जायजा लिया जाएगा, इन बातों पर तवज्जो दी गई, लेकिन ज्यादा तवज्जो लगता है कि सियासी बातों पर दी गई है। जैसे खुद मनमोहन सिंह ने जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें उन्होंने इस्लाह की जरूरत पर जोर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया और यह कहा कि जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 60 साल पहले कायम किए गए थे, इस दौर के तकाजों पर पूरे नहीं उतर रहे हैं और बदलते हुए हालात के साथ इनके अंदर कोई इस्लाह नहीं की गई। इसी के साथ ईरान का मसला या शाम का मसला या दूसरे मसाइल पर जो तवज्जो दी गई, तो इससे पता यह चल रहा है कि ये ब्लॉक जो है ये इकोनॉमिक इश्यूज से ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज पर तवज्जो दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरी जी जी बोले
जी, आपका
हेलो,
आपका नजरिया क्या है इस बारे में?
अच्छा मैं बोलता हूँ, अच्छा ठीक है। ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये जो है ब्रिक्स नेशन जो है वो इकोनॉमिक ब्लॉक की हैसियत से नहीं बल्कि पूरी तौर से सियासी या राजनीतिक ब्लॉक की हैसियत से ये उभर रहे हैं। राजनीतिक रंग इसलिए नजर आ रहा है तत्काल क्योंकि विश्व में कुछ तात्कालिक समस्याएं अभी उभर करके आई हैं और जो बड़ी खतरनाक समस्याएं हैं
जी।
और वही मैं दोहराना चाहूंगा कि जैसे ईरान है और सीरिया की समस्या, दोनों जगह मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका करना चाहता है और इसलिए ये जो सियासी बात जो ज्यादातर आई है वो इन हस्तक्षेप के खिलाफ कि ब्रिक नेशंस नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई मिलिट्री हस्तक्षेप हो इन देशों में, यहाँ की सरकारों को उलट दिया जाए, कोई और पपेट रेजिम पश्चिम देश की हो उसको बैठाया जाए, तो इसलिए ये सियासी लगता है। लेकिन एक्चुअली ये पूर्ण रूप से सियासी संगठन अभी मैं इसको नहीं मानता हूं। दूसरी चीज ये कि जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, जिस तरह की क्राइसिस अभी ग्रीस में आई है और ग्रीस को लेकर के जिस तरह से अमेरिका और यूरोप में कोहराम मचा हुआ है और एक के बाद एक क्राइसिस जो है वो पूरे यूरोप और अमेरिका को जो है वो डोमिनेट कर रही है, तो वो ऐसी स्थिति में ये ब्रिक्स नेशन ये पहले से कोशिश ये कर रहे हैं कि उस तरह की क्राइसिस इन देशों में न आवे, और उसके लिए जाहिर है कि बहुत जबरदस्त प्रयास हो रहा है, जैसे अपनी करेंसी में व्यापार की बात है या एक बैंक खोलने की बात है, अभी यद्यपि मटेरियलाइज नहीं हो पाया है लेकिन वो मटेरियलाइज शीघ्र हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जिस एक बार रूस के जो बहुत प्रसिद्ध फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिमाकोव साहब, वो कोई 10-12 साल 15 साल पहले वो भारत में आए थे और उन्होंने रसिया चाइना इंडिया ट्रायंगल की बात किया था
जी।
उस समय यहाँ दक्षिणपंथी सरकार थी वाजपेयी जी की और उन्होंने इसको मना कर दिया था और वो ट्रायंगल बनना ही चाहता था, अमेरिकन पॉलिटिकल डोमिनेशन या इकोनॉमिक डोमिनेशन जो दुनिया में खास करके एशिया और यूरोप में चल रहा था उसके खिलाफ, वो बात तो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। लेकिन ये जो ब्रिक नेशन जो बने, पहले उसमें चार ही थे, खाली ब्राजील था, अब साउथ अफ्रीका आ गया, तो जिस ट्रायंगल की बात प्रिमाकोव साहब ने कहा था या किया था कि इंडिया रसिया चाइना एक साथ आ जाएं, तो वो भले वो ट्रायंगल बन नहीं पाया हो लेकिन ब्रिक्स में वो ट्रायंगल कायम है। तो इस संदर्भ में ये बड़ा पॉलिटिकल महत्व का तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र बन गया है, और आपसी मतभेद बॉर्डर इशू को लेकर के चीन और भारत के बीच में जरूर है लेकिन रूस की भूमिका इसमें बहुत पेसिफाइंग होगी। रूस चीन का भी बहुत अंतरंग दोस्त बन गया है इस समय और भारत का तो बहुत पहले ही से है, तो इस तरह से राजनीति तो निश्चित रूप से भविष्य में आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इकोनॉमिक जो समस्याएं हैं उस पर ये देश जो है उसको कम महत्व दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि इकोनॉमिक समस्याओं पर ही ये देश सबसे ज्यादा महत्व देंगे एक दूसरे को और आपसी व्यापार को बढ़ाएंगे, अपनी करेंसी में बढ़ाएंगे, दोहरा जो कर की बात होती है कई बार वो दूर किया जाएगा वो मामले, और जो अभी जो अमेरिका का सैंक्शन जो ईरान के खिलाफ है उसको ये देश नहीं मानने जा रहे हैं, तो ईरान से भी व्यापार खास करके तेल का आयात जो है वो चाइना भी तेल का आयात करता है, इंडिया भी करता है वहीं से ईरान से ही, तो ये देखने में आ रहा है कि व्यापारिक क्षेत्र या जो आर्थिक समस्याएं हैं वो उस पर फिलहाल ये देश ज्यादा ध्यान देंगे। सिर्फ तात्कालिक समस्या जो ईरान और सीरिया की है जिसको लेकर के पश्चिमी देश उसमें हस्तक्षेप मिलिट्री हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इसलिए ये ब्रिक्स नेशन उसके खिलाफ सामने आए हैं और ऐसा लगता है कि ये सियासी ज्यादा है ये संगठन और आर्थिक कम है, जबकि ऐसा नहीं है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हुसैन साहब। आज दिल्ली में ब्रिक्स के रुकन मुल्कों के सरबराहों की जो गुफ्तगू हुई और दिल्ली डिक्लेरेशन में जो बातें शामिल हैं उनको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि ये इक्तसादी ब्लॉक ज्यादा है या सियासी ब्लॉक ज्यादा है?
शराफत साहब, हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। देखें, जब हम एक टर्म यूज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी तो उसमें सियासत भी आती है और उसमें इक्तसादियात भी आते हैं। इस वक्त जो दुनिया का इक्तसादी निज़ाम है वो ही रेगुलेट कर रहा है पॉलिटिक्स को। आप ये बिल्कुल ना भूलिए कि इस वक्त जो यूरोप में एक यूरो क्राइसिस है उसके पीछे भी पॉलिटिकल जो अवामिल हैं वो बड़े हद तक कार फार्मा हैं। ग्रीस में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चीज़ को भी ना भूलिए कि जो वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपाई एक मूवमेंट चल रही है पिछले गुज़िश्ता एक साल से, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया उस पर बिल्कुल खामोश है, थर्ड वर्ल्ड का भी और ईस्टर्न कंट्रीज का भी, वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसकी वजह से अमेरिका को और वेस्ट को एक बहुत बड़ा धचका है। और आप ये ना देखिए, ये भी देखिए कि इस वक्त दुनिया में एक इक्तसादी निज़ाम को, एक जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है वो आप उसको भी ना भूलिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जो तीन इंटरवेंशंस की हैं उसके नतीजे में अमेरिका को तकरीबन $3 ट्रिलियन का जो नुकसान हुआ है, और आपके प्रोग्राम से तवस्सुत से ही ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि $16 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका दुनिया का मोहताज है। तो इस तरह अगर आप तमाम तनाजुर में देखें तो सब ताने बाने जो हैं वो मिल रहे हैं। आप इस ब्लॉग को अगर इकोनॉमिक ब्लॉग देखें वो भी ठीक है, अगर एक सियासी ब्लॉग देखें वो भी ठीक है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ना भूलिए कि इकोनॉमिक ताकत के बगैर कोई भी सियासी ताकत हासिल नहीं हो सकती। अगर आप इकोनॉमिक तौर से किसी भी दुनिया के एक ब्लॉक से अलग हैं और दुनिया के एक निज़ाम से अलग हैं, तो आप फिर मिलके, जैसे ये ब्रिक्स पांच मालिक जो हैं, मिलके एक इकोनॉमिक पोजीशन लेके ही एक पॉलिटिकल पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये अमेरिका पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर यूरोपियन यूनियन पे डिपेंडेंट रहेंगे, अगर इकोनॉमिकली वर्ल्ड बैंक पे और IMF पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो जाहिर है कि ये अपने सियासी फैसला जात जो है वो नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसको दोनों तनाजुर में देखने की जरूरत है। अभी ये प्लीज एक बात ना समझिए कि फुली ये ऑर्गेनाइजेशनल भी हो जाएगा, ऑपरेशनल भी हो जाएगा और एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बन जाएगा। एक एक आगाज है एक गुज़िश्ता 4 सालों में, और ये चल के जाहिर है इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप की नींदें जरूर हराम होंगी। और इनकी जो आज की स्टेटमेंट्स निकली हैं सीरिया के मामले में, ईरान के मामले में, इक्तसादी निज़ाम के बारे में, UN सिक्योरिटी काउंसिल की तश्कील 9 के बारे में, और एक अपना एक वर्ल्ड बैंक क्रिएट करने के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है आलमी इक्तसादी निज़ाम को भी और आलमी सियासी निज़ाम को भी, जिसमें अमेरिका की एक कुलदी पोजीशन है। लेकिन इसको दोनों अलग अलग पैराय में देखना ज़रा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। इसको आप दोनों इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी देखिए, तो फिर आपको ये समझ आएगा कि ब्रिक्स के ये ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ अमेरिकन डोमिनेटेड इकोनॉमिक सिस्टम से तंग आ गए हैं, बल्कि वो पॉलिटिकल सिस्टम, जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिकन डोमिनेटेड है, उससे भी तंग आ गए हैं।
जी नज़ीर हुसैन साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि अभी जिस तरफ इशारा किया था जान दयाल साहब ने कि इसमें हिंदुस्तान और चीन शामिल हैं, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, रूस है इसमें, रूस और चीन के दरमियान भी बाज़ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इनके जो बाहमी इख्तलाफात हैं ये रुकावट बन सकते हैं इस ग्रुप के मजबूत होने में?
नहीं शराफत साहब, मैं नहीं समझता, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से रूस और चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह चाइना और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। देखें, एक चाइना ने एक ओपन स्काइज पॉलिसी अपनाई हुई है जिसको वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं, 1978 से ये चल रही है, और उनकी तमाम की तमाम फोकस जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को गेन करने की है। लिहाजा भारत के साथ उनके मसाइल हो सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में भारत भी एक बड़ा मुल्क है, भारत की भी अपनी एक सियासी रीजनल साख है, लिहाजा वो उस पैराए में चाइना के साथ कोई इस किस्म की मुखामसत नहीं चाहेगा। और जो अमेरिकन डोमिनेंस है जाहिर है उसके खिलाफ ये सारे ममालिक जो हैं वे इकट्ठे हैं। लेकिन अभी जो दयाल सिंह साहब ने एक बात और भी कही थी कि जो रशियन फैक्टर है वो इंडिया और चाइना के लिए एक पेसिफाइंग, एक फैसिलिटेटिंग पॉइंट साबित होगा, ना कि एक एंटेगनिस्टिक पॉइंट साबित होगा। और ये देखिए कि गुज़िश्ता 20 सालों में जब से चाइना और इंडिया में एक रिप्रोचमा की पोजीशन चल पड़ी है, इकोनॉमिक रिलेशन कितने अच्छे हो गए हैं दोनों मालिक में, रीजनल इंटीग्रेशन की रीजनल जो ट्रेड है उसमें कितना इजाफा हुआ है इन दोनों मालिक के दरमियान, तो मैं नहीं समझता कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं या कुछ सियासी मसाइल हैं वो इस तरफ जो है इसको एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है अमेरिका का भारत में, उसके खिलाफ शायद कुछ तश्वीश हो चाइना को। और ये आप ये भी देखें कि अमेरिका जो है वो भारत को एक काउंटरवेट के लिहाज से चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो उसमें कुछ तश्वीश हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तमाम ममालिक जो हैं वो मिलके, और खासतौर से भारत और चाइना अगर मिलके एक चीज बना रहे हैं, तो वो तश्वीश और खदशात जो हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि ज्योग्राफिकल या सियासी इश्यूज दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं इस एक बड़े ग्रुप को जो है वो कोई खदशा या कोई सदमा या कोई एक मसला पैदा कर सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। آپ لائن پر موجود ہیں جناب؟
جی ہاں موجود ہوں.
جی جان دیال صاحب، ابھی میرے سامنے ایک رپورٹ ہے اور جس میں بیلزینسکی نے بہت ہی گہری انہوں نے کنسرن ظاہر کیا ہے، تشویش ظاہر کی ہے روس اور چین کے نزدیک آنے پر، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ زیادہ نزدیک آتے ہیں تو پھر یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس اور چین اتنا نزدیک آ سکتے ہیں کہ امریکہ کے لیے خطرناک بن جائیں؟
دیکھیے امریکہ کے لیے تو کوئی بھی آدمی جو سر اٹھا رہا ہے، کوئی بھی دیش جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھ رہا ہے، سب کو امریکہ خطرے کی نگاہ سے دیکھتا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو پائے، کوئی بھی سینہ تان کے کھڑا ہو پائے، کوئی بھی سر اوپر کر کے کھڑا ہو پائے. تو امریکہ کے نظریے سے دیکھنے کی بات فرق ہے. رہی بات کہ کیا یہ پاسیبل ہے کہ چین اور روس اتنے نزدیک آ جائیں کہ پورے ہندوستان، پوری دنیا کے لیے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے یا یورپ کے لیے خطرہ بن پائیں. یہاں پہ ہسٹری میں جانا بہت ضروری ہے. 50 کے دشک میں 60 کے دشک میں چین اور روس جتنے نزدیک تھے شاید کبھی دوبارہ نہ ہو پائیں، کیونکہ اس کے بعد چین نے اکنامک ترقی بہت زور سے کر لی ہے، روس کا اکنامک ڈاؤن سلائڈ بڑے زور سے ہوا ہے. تو اتنا نزدیک جتنا نزدیک تھے اتنا تو کبھی ہو نہیں پائیں گے. اس کے بیچ میں پاکستان آیا ہے، اس کے بیچ میں افغانستان آیا ہے، اس کے بیچ میں ہندوستان کی چین سے لڑائی آئی ہے. تو بہت سارے رشیا کے سامنے ایسے فیکٹرز آ گئے ہیں کہ اس کو چین کا صرف اپنا پرانا کمیونسٹ بھائی مان کے چلنا اب ذرا مشکل ہو گیا ہے پچھلے 20 سال سے، خاص کر سے جب پوتین کا زمانہ آیا ہے. پوتین بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ آدمی ہیں، بڑے خوددار آدمی ہیں، اور ان کا رشیا کے لیے ایک ویژن ہے. اس ویژن میں 2 نمبر پہ ہی لوگ آتے ہیں، 1 نمبر پہ اور کوئی دیش آتا نہیں ہے. تو یہ بات تو امیڈیٹ خطرہ چین اور روس کا ایک سپر پاور کا کوئی بائنری بننے کا یا کوئی ڈول پاور سٹرکچر بننے کا میرا خیال ہے اس وقت اگر دھیان سے دیکھا جائے تو اتنا نزدیک نہیں لگتا جتنا یہ لوگ ہوا مچا رہے ہیں. بات صاف ہے، بات صاف ہے کہ ابھی امریکہ کی جو پچھلے 10 سال سے یا جب سے عراق میں انہوں نے شروع کیا تھا جو منمانی کر رہے تھے، جو ایک طرفہ ویوہار کر رہے تھے، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کی بالکل اویل نہ کر رہے تھے، ان کو روند رہے تھے، انگلینڈ اور یورپ کو اپنے ساتھ لے کے جس طرح مارچ کر رہے تھے، جہاں پہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہہ کے پورے ایک دیش کو برباد کر دیا، ایک پیپل کو برباد کر دیا، ایک قوم کو برباد کر دیا، اب وہ سہا نہیں جائے گا، یہ تو بات صاف ہے. حالانکہ جس کو کہہ سکتے ہیں لیبیا میں جو ہوا وہاں پر اگر یہ گروپ چاہتا جلدی ایکٹ کرتا تو وہاں پہ اتنی تباہی نہیں ہو پاتی. مگر آگے کیا ہوگا، ابھی چونکہ میں امیڈیٹلی یہ جو آپ نے دلی ڈیکلریشن کی بات کی، وہ ڈیکلریشن ہے، اس کا امپلیمنٹیشن کیا ہوگا میں نے بتایا. اس میں پالیٹکس بڑی نوانسڈ پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس. ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ کافی بڑا دوستانہ چل رہا ہے ایک طرف سے، چائنا اور انڈیا جیسے میں نے کہا تھا ساؤتھ ایسٹ میں، چائنا سی میں، اوشنز میں، سری لنکا میں، افریقہ میں ایک دوسرے کے بڑے خطرناک کمپیٹیٹرز بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ بات ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ایک دم کہ کیا ہوگا، افغانستان میں کس طریقے کا انٹروینشن رہے گا ہندوستان کا، چائنا کا، پاکستان کا، یہ سب میٹرکس ہے پورے دنیا کے جو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں چوکر یا چیس بورڈ بچھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک دم کوئی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن نہیں ہے. مگر ایک بات صاف ہے، اگلی باری امریکہ کی منمانی نہیں ہونے دیں گے. یونائٹڈ نیشنز میں چائنا رشیا ویٹو کریں گے، سیکورٹی کاؤنسل میں ہندوستان بھی ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہندوستان بھی ہے، جہاں پہ اگر کوئی زیادہ دیکھا جائے گا تو اسٹرکچر لگائیں گے. یہ میرا خیال ہے چھوٹے دیشوں کے لیے، باقی دیشوں کے لیے ایک اچھی بات ہے. اور جہاں تک برکس کا سوال ہے، جیسے کہا گیا پہلے بھی بہت لوگوں نے کہا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ایشوز میں آج کل پالیٹکس اور اکانومی کو اکٹھا دیکھنا ہے. اگر آپ کے پاس اکنامک مائٹ ہے تو آپ کی پولیٹیکل بات مانی جائے گی، اگر آپ کے پاس پولیٹیکل مائٹ ہے تو آپ اپنا ٹریڈ آگے بڑھا پائیں گے. یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے قدم سے قدم ملا کے آگے چلنے والی بات ہے. اور اسی وجہ سے برکس اب یورپین یونین کا، امریکہ کا، نیٹو کا ساتھ ہے، برابری کا سوال نہیں آیا ہے، ان کا ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت کر رہا ہے، ان کو سینہ دکھانے کی ہمت کر رہا ہے، ان کی بات کو کاٹنے کی ہمت کر رہا ہے. میرا خیال ہے ہم کو ابھی اسی سے ایک طریقے سے صبر کر لینا چاہیے.
جی پروفیسر تلسی رام صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ برکس گروپ سامراج کے مقابلے میں ایک آزاد اور مضبوط بلاک بن سکتا ہے؟
جی ہاں یہ اسی دشا میں اگرسر ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. اور اپنی جگہ پر یہ بھی بات صحیح ہے کہ جیسے بھارت اور چین کے بیچ میں کافی تنازع ہے بارڈر ایشو کو لے کر کے, اور بھارت جو کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے ویتنام کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں, اس پر چائنا ویرودھ کر چکا ہے. تمام یہ سمسیائیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ان سمسیاؤں کے جڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کارن دلائی لاما ہے اور تبت کا سوال ہے. جب بھی تبتن ریفیوزی جو بھارت میں رہ رہے ہیں وہ چائنا کے خلاف جب بھی کچھ کرتے ہیں اس سمے بھارت چائنا کے نشانے پر آ جاتا ہے, اور تبت کو لے کر کے چین بہت سینسٹیو ہے, اور اسی وجہ سے بھارت اور چین کا جو سمبندھ ہے وہ تبت کے چلتے یا دلائی لاما کے چلتے سمے سمے پر خراب ہوتا رہتا ہے. لیکن باوجود اس کے چونکہ برکس نیشن میں یہ سارے دیش ہیں اور آپسی سہیوگ بڑھا رہے ہیں, ویاپار بھی چین سے بہت کافی بڑھا ہے, اور وہ ویاپار آفیشیل ویاپار جو ہے وہ تو ہے ہی ہے, انآفیشیل طور پر بارڈر پر اسمگلنگ کے تھرو چائنا کا جو سامان ہے وہ پورے بھارت کے مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ بھارت کا تھوڑا ویرودھ بھی ہے کہ یہ جو ٹریڈ امبیلنس ہے چائنا اور بھارت کے بیچ میں, اس برکس سمٹ میں بھی وہ بات آئی تھی کہ اس کو امبیلنس کو سدھارا جائے اور برابر برابر کا حصے داری ہو ٹریڈ میں. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور ساری پرابلم بھی ساتھ ساتھ ہیں, لیکن باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ تبت کا پرابلم جو ہے یا دلائی لاما کا, یہ کبھی کبھی یہ پرابلم سامنے آ جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ بھارت اور چین کے سمبندھ بہت خراب ہو گئے ہیں, اور اس درشٹی کون سے لگتا ہے کہ برکس نیشن میں ایکتا نہیں ہے, جو کہ میں اس کو غلط مانتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپریری معاملہ تبت کا ضرور آ جاتا ہے سامنے, لیکن دونوں دیشوں میں شانتی بنی رہے, یہ بھارت بھی اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب شانتی بنی رہے گی ان دونوں دیشوں میں اور تبھی جو ہے یہ دونوں دیش وکاس کر سکتے ہیں آرتھک روپ سے, اور ساتھ میں جب آرتھک وکاس ہوگا تو راجنیت میں بھی یہ ڈومینیٹ کریں گے. تو اس سندرب میں برکس نیشن کا بھوشیہ میں بہت صحیح دشا میں دیکھتا ہوں.
بہت بہت
جائے گا, آپسی مدبھید بھی رہیں گے, وہ وارتائیں ہوتی رہیں گی, سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن کل ملا کر کے جو انتراشٹری
بہت بہت شکریہ پروفیسر تلسی رام صاحب. اسی کے ساتھ ہم نذیر حسین اور جان دیال صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. جیسا کہ پروفیسر تلسی رام نے کہا ہے کہ اگرچہ چین اور ہندوستان کے درمیان بعض اختلافات ہیں لیکن وہ اختلافات برکس گروپ پر اثر انداز نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.